कार्यवाहक सरकार और कार्यवाहक प्रधानमंत्री, केयर टेकर गवर्नमेंट एंड केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर। भारत का संविधान कार्यवाहक सरकार और कार्यवाहक प्रधानमंत्री की कोई व्यवस्था नहीं करता, जबकि संसदीय प्रणाली की सरकार में कार्यवाहक सरकार और कार्यवाहक प्रधानमंत्री की आवश्यकता प्रायः पैदा होती है। भारत का संविधान केंद्र में राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद के सलाह मशवरे के बिना राज्य प्रबंध चलाने की आज्ञा नहीं देता, परंतु जब मंत्रिपरिषद लोकसभा का बहुमत खो देती है तो राष्ट्रपति ऐसे मंत्रिपरिषद को वैकल्पिक प्रबंध होने तक पद पर बने रहने और राज्य प्रबंध चलाने के लिए कहता है। परंतु क्या लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त मंत्रिपरिषद और लोकसभा का विश्वास मत खो चुके मंत्रिपरिषद को समान स्तर देना ठीक होगा? आज बहुत सारे लोग कहते हैं कि क्योंकि भारत के संविधान में कार्यवाहक सरकार की कोई व्यवस्था नहीं है, पेज 169, इसलिए जो सरकार पद में है वह संवैधानिक सरकार है और उसे सभी शक्तियां प्रयोग करने का पूरा पूरा अधिकार होता है। परंतु उनका यह तर्क न्यायसंगत नहीं है। जिस सरकार को लोकसभा का विश्वास मत प्राप्त नहीं है वह सरकार कार्यवाहक सरकार तो हो सकती है, परंतु नियमित सरकार नहीं हो सकती। इसी कारण बहुत सारे विद्वानों का मत है कि कार्यवाहक सरकार को महत्वपूर्ण नीतियों से संबंधित निर्णय, मेजर पॉलिसी डिसीजंस नहीं लेने चाहिए। प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली सरकार 17 अप्रैल 1999 से लेकर 12 अक्टूबर 1999 तक कार्यवाहक सरकार थी। योग्यताएं, क्वालिफिकेशंस, संविधान की धारा 75(5) के अधीन निश्चित किया गया है। एक मंत्री जो निरंतर 6 महीनों के लिए संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा वह समय बीत जाने के पश्चात मंत्री नहीं होगा। ए मिनिस्टर हु फॉर एनी पीरियड ऑफ 6 consecutive months इज नॉट ए मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट शेल एट द एक्सपायरेशन ऑफ दैट पीरियड सीज टू बी ए मिनिस्टर Article 75(5). यह व्यवस्था प्रधानमंत्री पर भी लागू होती है और स्पष्ट होता है, एक, वह भारत का नागरिक हो, दो, वह सभी योग्यताएं रखता हो जो कि संसद के किसी भी सदन का सदस्य बनने के लिए आवश्यक है, तीन, उसके लिए संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना आवश्यक है और यदि नहीं तो प्रधानमंत्री नियुक्त होने के 6 महीने के अंदर अंदर उसके लिए सदस्य बनना जरूरी होगा। परंपरा के अनुसार निम्नलिखित 2 अन्य बातों को ध्यान में रखा जाता है, एक, बहुमत का विश्वास, मेजोरिटी कॉन्फिडेंस। प्रधानमंत्री बनने के लिए लोकसभा में बहुमत का विश्वास आवश्यक है। दो, लोकसभा का सदस्य होना, मेंबर ऑफ लोकसभा। प्रधानमंत्री का लोकसभा का सदस्य होना प्रथा पर आधारित है। प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और श्री लाल बहादुर शास्त्री नियुक्ति के समय लोकसभा के सदस्य थे, लेकिन 1967 में प्रधानमंत्री नियुक्त होते समय श्रीमती इंदिरा गांधी राज्यसभा के सदस्य थे तथा 1967 में हुई 4th लोकसभा के चुनाव के दौरान वे लोकसभा के सदस्य चुने गए थे तथा इसके परिणाम स्वरूप उन्होंने राज्यसभा की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया था। इसके पश्चात 4th तथा 5वें प्रधानमंत्री श्री मोरारजी देसाई और चौधरी चरण सिंह लोकसभा के सदस्य थे। 1984 में प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्ति के समय श्री राजीव गांधी लोकसभा के सदस्य थे। प्रधानमंत्री श्री वीपी सिंह तथा श्री चंद्रशेखर भी लोकसभा के सदस्य नहीं थे, परंतु बाद में वे लोकसभा के सदस्य चुने गए थे। प्रधानमंत्री श्री पीवी नरसिंहा राव नियुक्ति के समय किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे, परंतु बाद में वे लोकसभा के सदस्य चुने गए थे। संयुक्त मोर्चे के नेता श्री एचडी देवेगौड़ा तथा श्री इंद्र कुमार गुजराल और संयुक्त प्रगतिशाली गठजोड़ यूपीए के नेता डॉ मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्ति के समय राज्यसभा के सदस्य थे। प्रधानमंत्री की नियुक्ति संबंधी सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय, सुप्रीम कोर्ट्स जजमेंट एंड प्राइम मिनिस्टर्स अपॉइंटमेंट। अक्टूबर 1996 में दिए गए निर्णय द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित दो बातों को स्पष्ट किया गया था। एक, नियुक्ति के समय प्रधानमंत्री के लिए संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना आवश्यक नहीं है तथा ऐसा व्यक्ति नियुक्ति के पश्चात 6 मास तक प्रधानमंत्री के पद पर रह सकता है। दो, प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है, अर्थात प्रधानमंत्री के लिए लोकसभा का सदस्य होना आवश्यक है। 17 अगस्त 2001 को सर्वोच्च न्यायालय के 3 न्यायाधीशों के बेंच ने एक निर्णय में कहा था कि कोई भी व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य बने बिना 6 मास के लिए मंत्री के पद पर रह सकता है, परंतु उसे संसद का सदस्य बने बिना दोबारा मंत्री के पद पर नियुक्त नहीं किया जा सकता। दोबारा मंत्री बनने के लिए उसके लिए संसद के किसी भी सदन का सदस्य बनना अनिवार्य होगा और यह व्यवस्था प्रधानमंत्री के पद पर भी लागू होगी। पेज 170 अवधि टेन्योर। संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री की अवधि निश्चित नहीं है। धारा 75(2) के अनुसार मंत्री राष्ट्रपति की खुशी तक पद पर रहेंगे। द मिनिस्टर्स शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट आर्टिकल 75(2). इससे प्रतीत होता है कि राष्ट्रपति जब चाहे प्रधानमंत्री को पद से अलग कर सकता है, लेकिन वास्तविकता ऐसी नहीं। धारा 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप में लोकसभा के सामने उत्तरदायी होगी। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस ऑफ पीपल आर्टिकल 75(3). इससे स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री लोकसभा में प्राप्त बहुमत के समर्थन तक अपने पद पर रहता है। 15 जुलाई 1979 को श्री मोरारजी देसाई और 20 अगस्त 1979 को चौधरी चरण सिंह, अक्टूबर 1990 को श्री वीपी सिंह तथा 6 मार्च 1991 को श्री चंद्रशेखर ने लोकसभा में बहुमत का विश्वास समाप्त होने पर अपने पदों से त्यागपत्र दे दिया था। श्री अटल बिहारी वाजपेयी को केवल 13 दिनों के पश्चात प्रधानमंत्री के पद से त्यागपत्र देना पड़ा था, क्योंकि उन्हें अनुभव हो गया था कि वे लोकसभा में बहुमत का विश्वास प्राप्त नहीं कर सकेंगे। श्री एचडी देवेगौड़ा को लोकसभा में विश्वास मत वोट ऑफ कॉन्फिडेंस प्राप्त न कर सकने के पश्चात 11 अप्रैल 1997 को केवल 10 मास के लिए और श्री इंद्र कुमार गुजराल को कांग्रेस द्वारा समर्थन वापस लिए जाने के कारण 28 नवंबर 1997 को केवल 7 महीने के लिए प्रधानमंत्री के पद पर रहने के पश्चात इस्तीफा देना पड़ा था। इसी तरह श्री अटल बिहारी वाजपेयी को लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त कर पाने के कारण 17 अप्रैल 1999 को 13 मास पद पर रहने के पश्चात त्यागपत्र देना पड़ा था। अप्रैल 1997 में प्रधानमंत्री एवं राष्ट्रपति के मध्य छिड़े विवाद के समय अनेक विपक्षी नेताओं ने राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह को प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी को पद से हटाने की सलाह दी थी, लेकिन राष्ट्रपति ने ऐसा नहीं किया था, क्योंकि उस प्रधानमंत्री को जिसे लोकसभा में 3/4 बहुमत प्राप्त था पद से हटाना असंवैधानिक होना था। वेतन तथा भत्ते सैलरी एंड अलाउंसेस शेष मंत्रियों की भांति प्रधानमंत्री का वेतन एवं भत्ते भी संसद द्वारा निश्चित किए जाते हैं।